Om Shivaya Nama. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Dashashloki, presented by Swami Sri Vishnu Vallabhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Dashashloki, jo Acharya Shankar ke dwara rachit hai, isi ke upar Vedant ke Dhurandhar मर्मज्ञ प्रकाशन करने वाले आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी की जो टीका सिद्धांत बिंदु, उसके अनुसार अभी प्रथम श्लोक के जो अवतरण है जिसके ऊपर हम सब श्रवण कर रहे हैं। अज्ञान किसको बोलते हैं? अद्वैत वेदांत सिद्धांत के अनुसार कल आप लोगों ने अज्ञान का जो शाब्दिक अर्थ होता है और साथ में संप्रदाय के अनुसार जो उसके लक्षण बताए, ये संक्षेप में आपने सुना। ज्ञान का जो विरोधी है उसको अज्ञान बोलते हैं, और इसी अज्ञान की वजह से वह सर्वज्ञ परमात्मा जब उपाधि को ग्रहण करके अपने को जीव मानता है तो जीव किसको बोलते हैं? जो अल्पज्ञ हो। स्वरूप को जानने के बाद सर्वज्ञ तो हमेशा ही है, लेकिन जब जान लेते हैं संपूर्ण वेदांत शास्त्रों का जो प्रयोजन है, निर्विशेष ब्रह्म का बोध कराना, विशेषता से जो युक्त हो उसको सविशेष बोलते हैं, और विशेषताओं से जो रहित हो उसको निर्विशेष बोलते हैं। अभी हम लोगों की ऐसी आदत पड़ गई है कि ब्रह्म की खासियत बताओ। आप पूछते हो किसी से कि ब्रह्म की खासियत क्या है, उसकी विशेषता क्या है। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वह कुछ न कुछ विशेषता लेकर के ही रहती है, तो इसलिए हम लोगों को आदत पड़ गई कि जैसे संसार के पदार्थ विशेषताओं से युक्त है, वैसा ही वह परमात्मा भी कुछ न कुछ तो विशेषता वाला होगा। लेकिन जब पढ़ने चले वेदांत के द्वारा आपने ज्ञान प्राप्त किया, क्या मालूम पड़ा? सारे विशेषताओं से जो रहित हो उसी को बोलते हैं परमात्मा। कुछ बनने में आनंद है या कुछ न बनने में आनंद है? अभी तो प्राय हम लोग बनने बनाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। अंग्रेजी वाले ने बढ़िया नाम रख दिया, बनाना। अब उसके हिंदी के अनुसार अर्थ करो तो जो ना बने, बना ना हो, उसका नाम क्या है? कभी आपने सुना है सेव एप्पल? कई बार तो बोलते फल काट के ले आओ, और अच्छी भाषा में बोलना हो तो बोलते फल जरा संवार के ले आना। संवार के लाना मतलब सजा के लाना, और सजा के लाने का मतलब भी है, यदि चाकू नहीं है, प्लेट नहीं है, रास्ते में आप चल रहे हो तो थैला से सेव निकाला, यदि आपके पास कोई टिश्यू पेपर है, हाइजीन जेल है, पानी है तो पोछ लोगे, धो लोगे, नहीं तो थैला से निकाले, टाइम कम है, भूख लग रही है, बोले सेव धो लो, अभी पानी तो है नहीं, क्या करना, जैसा मुंह मारो, कुछ नहीं होता है, लगे खाने। अब उसके अंदर जितने बीज वाला हिस्सा और प्लास्टिक की तरह जो अंदर होता है वहां तक तो हम अपने दांत से छांट छांट के खा लेते हैं और बीज का हिस्सा निकाल के फेंक देते हैं, तो सेव को संवारो, पपीता संवारो, लेकिन कोई बोले मैं आपके लिए केला बना के ले आऊं, केला को बनाना पड़ेगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, प्रसाद में भी केला देने में अच्छा रहता है, बस छिलका उतारे और उसको खाना शुरू किया। बनाना जिसको बनाया ना जा सके। अब हम लोग अभी यही विचार कर रहे हैं कि बनने में आनंद है कि बनाने में आनंद है। बनारस में थे एक महात्मा, उनको हम लोग गुरुजी बोलते थे। एक बार उनके साथ हम गए कैलाश आश्रम ऋषिकेश, तो जो अपने थे महाराज जी ब्रह्मलीन विद्यानंद जी महाराज, वो आपस में बड़े मजाक करते थे, तो हम तो उनको गुरुजी बोलते थे। जब वो गए कैलाश आश्रम महाराज जी के पास, बोले आइए स्वामी जी, ओम नमो नारायणाय, आप तो मंडलेश्वर मेकर हैं। क्या नाम रखा उनका? मंडलेश्वर मेकर। आप जीवन में मंडलेश्वर तो नहीं बने, लेकिन आपने कई लोगों को मंडलेश्वर बनाया। तो वो तो ज्यादा मजाक भी नहीं जानते थे, इतने ही बोले कि बनाने में ही आनंद आता है, बनने में नहीं। और हम लोग अभी किसके चक्कर में पड़े हैं, विचार कर लो भाई। भले ये मजाक जैसा लगता है, लेकिन सही बात जो है बोलना। अभी आप यहां बनने के लिए बैठे हो कि नहीं? क्या बनने के लिए बैठे हो? जीव से ब्रह्म बनने के लिए बैठे हो क्या? है ही। तो फिर क्या बन रहे हो यहां? जो चीज ना हो और वो चीज बनने लग जाओ तो बनाने की बात की जाए? वो चीज तो बनी बनाई है। बार बार आप बोलते हो मूला ज्ञान तूला ज्ञान। मूल का मतलब होता है दो चीजें, मूल है परमात्मा, और इधर अज्ञान में भी क्या जोड़ दिया? मूल। और तूला ज्ञान का मतलब, तूल मतलब होता है स्थूल, स्थूल अज्ञान को ही तूला ज्ञान बोलते हैं, और मूल अज्ञान जो सूक्ष्म रूप से है वह परमात्मा मूल रहते हुए भी मूला ज्ञान के माध्यम से कैसे ढक जाता है? गीता पढ़ते हो ऊर्ध्वमूलम रसशाखम, वह जो मूल है ऊर्ध्व है, ऊपर की ओर है। संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं वहां पर, और बता दिया उस वृक्ष का जो मूल है ऊपर है। दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, यहां तक कि मकान के भी मूल नीचे की ओर होता है कि ऊपर की ओर? और इस संसार वृक्ष का जो मूल है उसको बता दिया ऊपर है। वो कैसे रहता है? अपनी मूलता को बनाए रखता है। फिर भी इसमें सबसे सरल उपाय है माया सबलम ब्रह्म। वह परमात्मा माया के द्वारा सबल हो जाता है। सबल तालव्य शकार है, पंचीकरण आदि आप पढ़े होंगे तो वहां आता है। क्या नाम है? माया सबलम ब्रह्म। सबल का यदि आपको ठीक ठीक हिंदी में अर्थ समझना हो और कोई पूछे भी, तो सबल का मतलब होता है चित्रित, चित्रित हो जाना। चित्रित का मतलब चित्र बन जाना। सांप है ना, सांप जब चलता है तब भी वो सांप है, और जब कुंडली मार करके बैठ जाता है तब भी वो क्या है? सांप ही है। चलने वाला सांप और कुंडली मार करके बैठने वाला सांप में कोई अंतर नहीं है। बस इतना ही यहां पर भी समझ लो। जब वह चलता है, चलने के रूप में सृष्टि आदि की प्रक्रिया होती है, माया को वश में लेकर के वह परमात्मा ईश्वर नाम से जाना जाता है। और जब कुछ भी नहीं करता है उस समय कुंडली मार करके बैठे हुए सांप की तरह है, चलने वाला भी परमात्मा, बैठने वाला भी परमात्मा, माया को लेकर के जगत बनाने वाला भी परमात्मा, जगत बनने वाला भी परमात्मा। और जगह तो देखने में आता है कि बनने वाला कोई और है, बनाने वाला कोई और है, यहां तो सब कुछ वही है। तभी तो आप बोलते हो बार बार ये क्या है, विवर्तवाद। रस्सी में सांप दिखने से सांप वहां हो नहीं जाता, रस्सी के बिना सांप दिख नहीं सकता, लेकिन सांप नाम की कोई चीज वहां है भी नहीं। अधिष्ठानत्व मात्रेना कारणम ब्रह्म गीयते। अब रस्सी में सांप ही दिखता है क्योंकि सजातीय पूर्वक भ्रम होता है। रस्सी में मकान नहीं दिखेगा, रस्सी में कुर्सी नहीं दिखेगी, रस्सी में कोई आदमी नहीं दिखेगा, दो तीन चीजों के सजातीयता लेकर मान लिया। रस्सी पड़े होने पर भू छिद्र, जमीन फटी हुई है, ऐसा तो भ्रम हो सकता है। पानी गिरा है, जल की धारा दिख सकती है, कि सांप दिखना, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा मिलता जुलता है रस्सी के। अच्छा, जितनी मोटी रस्सी उतना ही मोटा सांप भी दिखेगा उसमें, पतली रस्सी पतला सांप, मोटी रस्सी मोटा सांप, टेढ़ी रस्सी टेढ़ा सांप, गोल रस्सी गोल सांप, इतना ही तो है। आप लोग ध्यान लगाते हो? किसका ध्यान लगाते हो? अभी आप लोग ध्यान ही तो लगा रहे हो, बोल तो केवल मैं रहा हूं। आप लोग समाधि में हो इस समय में, बोल नहीं सकते। सजातीयता को लेकर के भ्रम होता है। इस जगत के रूप में दिखने वाला परमात्मा, जब जगत को देख करके आप परमात्मा को जगत से अलग मानते हो तो इसी को बोलते हैं परिच्छिन्नता। जागृत अवस्था में ज्यादा परिच्छिन्नता है या स्वप्न अवस्था में या सुषुप्ति अवस्था में? क्या बोल रहे हो, जरा जोर से बोलना। जागृत अवस्था में परमात्मा परिच्छिन्न ज्यादा होता है या स्वप्न सुषुप्ति में? प्रश्न ये है, होता नहीं है वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो बोलना पड़ेगा ना। होता ही नहीं है तो फिर तो कथा ही बंद कर दो, बात ही खत्म। जागृत अवस्था में परमात्मा परिच्छिन्न क्यों होता है? जितने द्वैत की प्रतीति जागृत में है उतने स्वप्न और सुषुप्ति में नहीं, याद रखना। जागृत अवस्था में द्वैत की प्रतीति बहुत सर्वाधिक है, एक एक चीज फूल को छू रहे हो आप, मैं स्पर्श करने वाला स्पृष्टा, और ये हो गया स्पर्श्य, और बीच में जो स्पर्शन जो ज्ञान हुआ कि ये गेंदे का फूल कोमल है। क्या जो एक एक ज्ञान कल बताया था ना, प्रज्ञान जो होता है वो दो प्रकार के, एक तो ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में जो भेद पैदा करे वह है खंडित ज्ञान, और जब ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में भेद मिट जाए वही है अखंड ज्ञान। श्रुति आदि के उदाहरण महापुरुष लोग भी देते हैं, आप सुनते हो, गहरी नींद में जाने के बाद हे सौम्य, वह जीव उस परमात्मा से एक हो जाता है। यहां पर हम लोग अभी एक हैं या नहीं ये विचार चल रहा है। स्वप्न अवस्था में स्वाध्याय प्रवचन की भी जरूरत नहीं पड़ती, सुषुप्ति में भी नहीं पड़ती, ये सारे कहां करना पड़ता है, जागृत में। जितने जितने हम चाहे वो पंचकोश का जब विवेक करते तो उसमें भी तो यही आता है कि आत्मा के नजदीक जितना आनंदमय कोश है उतने ही सबसे ज्यादा दूर कौन है, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश उससे बहुत दूर है और आनंदमय कोश बहुत ही नजदीक है। अन्नमय कोश की अपेक्षा प्राणमय कोश की जितनी समीपता है उस परमात्मा से उतने अन्नमय की नहीं है, और प्राणमय की भी समीपता मनोमय की अपेक्षा कम है, मनोमय की समीपता विज्ञानमय की अपेक्षा कम है, और विज्ञानमय की अपेक्षा आनंदमय की समीपता अधिक है। यही तो समझने का तरीका है। तो जब सृष्टि प्रक्रिया होती है उसमें बोल देते हैं कि जागृत अवस्था के वेष्टि अभिमानी कौन है, विश्व। और इधर क्या बोलते हैं, समष्टि अभिमानी वैश्वानर। सबने भोजन किया, अपने अपने थाली का मामला गया पेट में, पचाने वाला जो है अहम वैश्वा नरो भूत्वा। वैश्वानर रूप परमात्मा ही उस अन्न को सप्त धातु के रूप में परिणत करना, एक एक अंग में उसको पहुंचाना, डालते हैं मुंह से, जाता है पेट में और रस बन करके पहुंचता है सिर की तरफ। केवल नीचे नीचे जाता तो हम लोगों का मस्तक आदि क्या होता, सूख जाता। सूखता कि नहीं सूखता? पानी पीते हो पेट में जाता है पानी, और पसीना किधर निकलता है, सिर में। तो पेट के पानी को ऊपर किसने धक्का मार के पहुंचाया? इससे पता चलता है उस पूरे शरीर में किस अंग में कितना किस हिसाब से जाना है। और कभी कभी जब डिसबैलेंस होता है तो किसी के टांग में ज्यादा चले जाए तो टांग ज्यादा मोटी हो जाएगी, पीछे के हिस्सा में गया तो पीछे, पीठ में गया तो पीठ में, कमर में तो कमर में। जा तो रहा है सबका भोजन पेट में ही, और किसी के गले के पास आया तो यहीं पर हिस्सा भर जाता है। किसी का सिर इधर से उधर नहीं होता, लगता है जो खाया सब ऊपर की ओर ही गया क्या। ऐसी जिसकी व्यवस्था है वह परमात्मा जागृत अवस्था में समष्टि अभिमानी वैश्वर नाम से प्रसिद्ध है, और वेष्टि अभिमानी विश्व। स्वप्न अवस्था में ऐसा ही है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। हिरण्यगर्भ समष्टि अभिमानी और व्यष्टि अभिमानी तेजस। जागृत अवस्था में विश्व नेत्र में हम रहते हैं, तो स्वप्न अवस्था में कहां चले जाते हैं, कंठ में। देखो आना जाना कुछ भी नहीं है, वो एक तरफ उस बात को रखो, समझने समझाने के लिए मानना पड़ता है। और तृतीय जो अवस्था है हृदय के अंदर पुरीतति नाड़ी में जाने के बाद सुषुप्ति काले सकले विलीने तमो विभूत सुखरूपमेति। उस समय जो वह प्रकर्षेण अज्ञ कुछ भी नहीं जानता, एकमात्र क्या है वहां पर अविद्या की वृत्ति जो मानते हैं, मतलब अज्ञानमयता। जागृत और स्वप्न में ज्ञान अज्ञान दोनों की वृत्ति बनती रहती है, जानता हूं नहीं जानता हूं दोनों बोलते हो, और वहां जानता हूं नहीं जानता हूं कुछ भी नहीं बोलते हो। किसमें? सुषुप्ति अवस्था में। तीनों का लक्षण किया है आप लोगों को याद होगा। जागृत अवस्था में इंद्रियों के द्वारा विषयों की जो उपलब्धि होती है उसी का नाम जागृत अवस्था है। इंद्रिय ही अर्थोपलब्धि जागरितम, ये लक्षण किया। इंद्रियों के द्वारा अर्थ मतलब विषय, उसकी जो उपलब्धि होती है, इंद्रियों के साथ विषय का संपर्क होना जरूरी है। स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में इसी बात को लेकर के भेद है। तो इंद्रिय ही अर्थोपलब्धि जागरितम करणेषु उपसंहृतेषु। स्वप्न अवस्था में इंद्रियां उपसंहृत हो गई है, शांत हो गई है, आंखें बंद है, कान आदि से सुनने की कोई प्रवृत्ति नहीं रह गई है, कुछ भी चले कथा प्रवचन, आप स्वप्न देख रहे हो, आपको मालूम नहीं क्या हो रहा है। करणेशु उपसंहृतेषु जागृत संस्कारज प्रत्यय, जागृत अवस्था के जो प्रत्यय है, ज्ञान है, उसकी आपको स्मृति होती है। जागृत संस्कारज प्रत्यय स विषय स्वप्न, उसका नाम स्वप्न है। तो इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागृतम जब अर्थ करते हैं कि इंद्रियों के साथ विषय का संपर्क हो तो उसका नाम है जागृत अवस्था, और यदि नहीं है, भले ही आप जग भी रहे हो, तब भी उसका नाम स्वप्न है। कैसे? गाड़ी में चल रहे हो, अचानक आपको कोई चीज याद आ गई, अरे अमुक दुकान की मिठाई बहुत अच्छी होती है, मन की पकौड़ी नहीं खाते हो, पकौड़ी कहां है? कढ़ाई में। पानी कहां आ गया? मुंह में। पकौड़ी खाए हुए जो संस्कार पड़े ना, उसकी स्मृति हो आई। तो गाड़ी में जब आप अचानक मिठाई आदि को याद करते हो तो गाड़ी चलाने वाला बगल में बोलता है, बाबूजी सपना देख रहे हो क्या? बातें तो चल रही सब जागृत अवस्था में, लेकिन विषय का स्मरण मात्र है, इंद्रियों के साथ वहां संपर्क नहीं है, इसलिए वह भी क्या कहलाएगा? स्वप्न ही कहलाएगा। और जब जब इंद्रियों के साथ संपर्क हो तो जागृत अवस्था है, इसलिए इंद्रियों के साथ संपर्क होना और ना होना यही है जागृत और स्वप्न को भेद करने वाला। स्वप्न में भी आप वही बोलते, मैं देखता हूं, खाता हूं, जागृत की तरह ही बोल रहे हो, लेकिन वहां पर विषय के साथ इंद्रियों का संपर्क नहीं है। और काल आदि को भेद लेकर के भी मान लेते, जागृत अवस्था के पदार्थों में स्थायीपना है, स्वप्न के पदार्थों में अस्थायीपना है। जागृत अवस्था में प्रातः काल की रोटी बची हुई शाम को दोपहर को भी खा सकते हो, स्वप्न अवस्था की रोटी जितने खा लिया खा लिया, एक बार आंख खुल गई वो रोटी दोबारा मिलने वाली कि मिलेगी? कहो, थोड़े देर सो लेते हैं, वो रोटी रह गई है बाकी खा लेता हूं, फिर उठते हैं दोबारा। एक आदमी बड़ा अच्छा सपना देख रहा था, पत्नी ने उठा दिया अचानक, उठा तो बड़ा दुखी हो गया, तुमको यही समय मिला उठाने का, क्या हुआ? तुमने मेरा 20,000 का नुकसान करा दिया, किसी को दिया था हमने 40,000 उधार, 20,000 उसने दे दिया था, हमने कहा भाई 20,000 और ला के दो, वो लेने गया और उतने तुमने उठा दिया। तो बोले, वो तो 20,000 फिर दोबारा दे देगा कभी, जो आपको 20,000 मिला है ना अभी, उससे तो दूध का जो हिसाब है वो दूध वाला बाहर खड़ा है, उसमें से दे दो।